नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, ही तेज मुझ में हो प्रभु। मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, ही तेज मुझ में हो प्रभु। पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु तेरी शुद्धता मुझ में हो, पवित्र तू प्रभु तेरी पवित्रता मुझ में हो, तेरी शुद्धता मुझ में हो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के प्रेम में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी आप परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, ताकि जब वे आज के अध्ययन में बैठें तो निश्चित रूप से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए। हम योहन्ना रचित सुसमाचार से अपने अध्ययन को कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी हम कुछ नई बातों को अवश्य सीखेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं। हमारी विनती है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो हम समझ सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए भी जो बीमार हैं, दुखी हैं, निराश हैं, तंगी और मुसीबत में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लीजिए, ताकि वे भी आप पर विश्वास कर सकें, आप पर भरोसा रख सकें कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं, जो शांति के राजकुमार हैं, सारे बातों के समाधान करता आप हैं। पिता परमेश्वर, आप सहायता और मदद करें और इस अध्ययन से हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, आज हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं और हमने अब तक जो देखा है कि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी और सप्त का दिन आरंभ होने जा रहा था, अतः उन्होंने यीशु की अंतिम क्रिया आधी ही छोड़ दी और उसे कब्र में रख दिया। अब सप्ताह के पहले दिन कुछ स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र पर आ रही थी। वे सोच रही थी कि कब्र के द्वार पर रखा गया पत्थर कैसे हटाए। तभी मरियम मगदलिनी आगे बढ़ जाती है और देखती है कि कब्र खाली है। वह तुरंत जाकर पतरस और यूहन्ना को यह संदेश देती है। वे आकर देखते हैं कि कब्र खाली है, वहां केवल यीशु का कफन रखा था। मेरे मित्रों, यूहन्ना की अपेक्षा किसी को भी यह बोध नहीं हुआ कि यीशु फिर जी उठा है। उन्होंने यही सोचा कि यहूदियों ने यीशु का शव चुरा लिया है। मरियम मगदलिनी ने भी तो यही यीशु को मालिश समझ लिया था और पूछा कि उसने यीशु का शव कहाँ रखा है। अब हम देखेंगे कि यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देता है, परंतु थोमा को विश्वास नहीं होता है कि वह तो यीशु को छूकर देखना चाहता था। योहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे मित्रों, जब यीशु पर अभियोग चल रहा था और उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब शिष्य उसे छोड़कर भाग खड़े हुए थे। अब वे सब एक साथ छिप कर बैठे हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं यहूदी उन्हें भी ना मार दें। आपने ध्यान दिया कि परमेश्वर मनुष्यों के मध्य उपस्थित होता है, तो क्या होता है? वहां शांति व्याप्त हो जाती है। विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने से शांति मिलती है। यद्यपि द्वार बंद था, यीशु कमरे में आ गया। महिमा की देह प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होती है। यही कारण है कि बादलों में उठाए जाने के समय हमारी देह जो परिवर्तित हो जाएगी, उसे हवा में उड़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। हम योहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मेरे मित्रों, यद्यपि यीशु की यह देह महिमा की देह थी, उसमें कीलों के और भाले की मार के चिन्ह थे, क्योंकि ये चिन्ह उसने हमारे कारण पाए थे, परंतु हमारी परिवर्तित देह में चोट के चिन्ह नहीं होंगे। हम तो निर्दोष और निष्कलंक प्रभु के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। परंतु यीशु के हाथों और पंजर के चिन्ह अनंत काल तक हमारे पापों के प्रतीक होंगे। हम यूहन्ना 20 उसके 21 पद में पढ़ते हैं, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ध्यान दीजिए, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यह शांति पद 19 की शांति से भिन्न है। पद 19 की शांति उद्धार की शांति है, जबकि उद्धार आ गया है। यह शांति उस विश्राम की शांति है जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में किया गया है। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय मित्र, एक और शांति है जिसे यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 29 पद में आत्मा का विश्राम कहा है। यह परमेश्वर की सहभागिता और आज्ञा पालन से प्राप्त शांति है। उद्धार का कार्य पूरा हो गया है और यीशु चेलों को संसार में वैसे ही भेज रहा है जैसे परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा था। यीशु ने अपनी प्रार्थना में भी यही कहा था, जिसे हम यूहन्ना 17 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ चुके हैं। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 20 अध्याय उसके 22 पद में, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। मेरे मित्रों, यह समय व्यवस्था से अनुग्रह में प्रवेश का समय है। शिष्यों के जीवन और मसीह की सेवा में यह समय का अंतराल है। उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और पेंतिकोस्त के मध्य का समय है। लुका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि वे प्रार्थना में उसके नाम से कुछ भी मांगेंगे तो वह हो जाएगा। पद 13 में यीशु ने स्पष्ट किया कि वह पवित्र आत्मा के विषय कह रहा था, जिसे मांगने पर परमेश्वर अवश्य देगा। परंतु उन्होंने संभवतः ऐसी प्रार्थना नहीं की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 16 पद में यीशु ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। निसंदेह शमौन पत्रस ने उस समय आत्मिक बुद्धि का प्रदर्शन किया था जब उसने यीशु को परमेश्वर पुत्र मसीह कहा था, परंतु शीघ्र ही वह यीशु को उसके उद्देश्य पूर्ति से रोकना चाह रहा था कि वह क्रूस न उठाए। परंतु इस समय मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें आत्मिक नवनीकरण हुआ था। इससे पूर्व उनमें आत्मा का अंतर्वास नहीं था। लिखा है कि उन पर फूंका। यह काम धर्म शास्त्र में एक ही बार किया गया है। आरंभ में जब परमेश्वर ने आदम की रचना की, तब उसमें जीवन का श्वास फूंका था। यीशु ने अपने शिष्यों में अनंत जीवन फूंका, अर्थात उनमें पवित्र आत्मा फूंका। यह उसने इसलिए किया कि उसके स्वर्ग रोहन और पवित्र आत्मा के आगमन के बीच के समय में संभले रहे। पेंतिकोस के दिन वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे और मसीह की देह बनेंगे और उन्हें ईश्वरीय सामर्थ प्राप्त होगा। तब से आज तक पवित्र आत्मा संसार में है और विश्वासियों में अंतर्वास करता है। वह प्रत्येक विश्वासी को बपतिस्मा देकर कलीसिया में जोड़ता है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 23 पद में पढ़ते हैं, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। मेरे प्रिय मित्र, यह एक महत्वपूर्ण पद है, परंतु इसे समझने में चूक होती है। जॉन केल्विन ने लिखा है, जब मसीह ने अपने शिष्यों को पाप क्षमा करने में सहभागिता प्रदान की, तब उसने उन्हें अपना विशेष अधिकार नहीं दिया था। पाप को क्षमा करने का अधिकार केवल उसी का है। वह केवल उन्हें अपना नाम देता है कि वे पापों की क्षमा का प्रचार करें। संपूर्ण प्रेरितों के काम और पत्रियों में कहीं भी शिष्य किसी के पाप क्षमा नहीं करते हैं, अर्थात क्षमा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वे केवल पापों की क्षमा का प्रचार करते रहे हैं। और मेरा प्रश्न यह है, पापों की क्षमा कैसे मिलती है? परमेश्वर भी पापों की क्षमा नहीं देता है। पापों की क्षमा केवल मसीह यीशु के लहू से है। पुराने नियम में भी पापों की क्षमा यीशु के बलिदान की प्रतीक्षा में थी। परमेश्वर ने व्यवस्था के आधार पर क्षमा किया, परंतु यीशु के आगमन की ओर देखते हुए कि वह उनके भी पापों को उठाएगा। आज हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा। मेरे प्रिय मित्र, आप और मैं पापों की क्षमा का कारण कैसे बनते हैं? सुसमाचार सुनकर। लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। तभी होता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हैं और सुनाते हैं। आज यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है और यह हमारा उत्तरदायित्व भी है। यदि हम संसार में सुसमाचार का प्रचार नहीं करते हैं तो उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। संसार को पापों की क्षमा प्रदान करने का एक ही साधन है कि सुसमाचार प्रचार करें। मेरे मित्रों, आप क्या कर रहे हैं? आगे हम देखते हैं कि थोमा को यीशु का दर्शन मिलता है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। ध्यान दीजिए, थोमा खुशी को दुख में बदल देता था। शिष्य बड़े आनंद से यीशु के जी उठने की चर्चा कर रहे थे कि थोमा ने अपना संदेह प्रकट कर दिया। हम यूहन्ना 20 उसके 25 पद में पढ़ते हैं, जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पांजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, थोमा के पास विश्वास करने के लिए पुष्ट प्रमाण थे, परंतु उसने विश्वास नहीं किया। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अन्य शिष्यों के साथ ही रहा। मेरे मित्रों, आपको अनुग्रह में जीना है तो पवित्र जनों के साथ रहना होगा। आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा बांटनी होगी। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। मेरे प्रिय मित्रों, हमें एक साथ रहना है ताकि हम आत्मिक रीति से उन्नति करें। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 26 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रिय मित्र, कहीं नहीं लिखा है कि उसने यीशु को छुआ, आवश्यकता ही नहीं थी। थोमा की समस्या आज भी विश्वासियों के साथ है। यहाँ समस्या प्रमाणों की कभी नहीं है, समस्या मन की अवस्था की है। यदि किसी का संदेह वास्तविक है तो परमेश्वर उसका निवारण करेगा, परंतु वह हर एक संदेह का निवारण नहीं करता है। मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि वह पुराने नियम में विश्वास नहीं करता है, जिसका कारण मुझे बाद में पता चला। वह व्यभिचार का जीवन जी रहा था और पुराने नियम की पुस्तक निर्गमन 20 उसके 14 में आ गया है, तू व्यभिचार ना करना। यह उसकी नैतिक समस्या थी जिसके कारण वह पुराने नियम में विश्वास नहीं कर पा रहा था। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर वास्तविक संदेह को दूर करता है। थोमा के शब्द धर्मशास्त्र की सबसे बड़ी गवाही है। किसी यहूदी के लिए यह कहना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, विश्वास की चरम सीमा है। यह संदेह करने वाला थोमा के वचन है। यूहन्ना 20 उसके 29 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मेरे मित्रों, हम जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यहाँ एक विशेष आशीष है। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 30 और 31 पद में हम आगे पढ़ते हैं, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मेरे प्रिय मित्रों, यह सुसमाचार की कुंजी है। मेरे विचार में यूहन्ना का कहने का अर्थ यह है कि यीशु ने पुनरुत्थान के बाद भी अनेक कार्य किए जिनका वर्णन नहीं किया गया है, यूहन्ना ने सुसमाचार लिखने के उद्देश्य से संबंधित मुख्य विवरण ही दिए हैं। यूहन्ना का उद्देश्य यीशु की जीवनी लिखने का नहीं था, उसने तो अन्य सुसमाचार वृत्तांतों में छोड़ी गई बातों को भी नहीं लिखा है। उसके लिखने का उद्देश्य था कि पढ़ने वाले विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और उसके नाम से अर्थात उसके नाम में विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। यीशु में विश्वास के ही द्वारा आपको जीवन प्राप्त होता है और आपका नया जन्म होता है। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 21 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और देखेंगे कि यीशु हमारे मन मस्तिष्क, हमारे मन और हमारी इच्छा का स्वामी अर्थात प्रभु है और हमें जीवन में लेकर चलता है कि हम उसकी सेवा करें। वह हमारी मनोइच्छा का प्रभु है और हमारी सेवा को दिशा निर्देश देता है। वह हमारी सेवा का उत्प्रेरक है। वह हमारे मन का प्रभु है। वह हमारे मस्तिष्क का प्रभु है। अतः उसकी सेवा के निमित्त हम किसी प्रकार का बहाना नहीं बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं अध्याय 21 यूहन्ना रचित सुसमाचार का उपसंहार। मेरे विचार में यूहन्ना ने सुसमाचार लिखने के बाद प्रस्तावना और उपसंहार लिखकर उसमें जोड़ा है। इस अध्याय में 3 घटनाएं हैं। गलील सागर, जिसे तिबरियास झील भी कहते हैं, वहां शिष्यों का यीशु के साथ मछली पकड़ने का अनुभव इससे प्रकट है कि यीशु हमारी मनोइच्छा का प्रभु है और वह हमारी सेवा को दिशा निर्देश देता है। दूसरी घटना है झील के किनारे नाश्ता करने की। यह प्रकट करती है कि प्रभु यीशु हमारे मन पर प्रभु है और इसके द्वारा हमारी सेवा का उद्देश्य उसका प्रेम प्रकट होता है। तीसरी घटना है यीशु द्वारा शमौन पत्रस की मृत्यु की घोषणा। इसके द्वारा प्रकट होता है कि यीशु हमारे मस्तिष्क का भी प्रभु है। ज्ञान में कमी और परिस्थितियों में बदलाव सेवा से बचने का बहाना नहीं है। इस संपूर्ण अध्याय में दर्शाया गया है कि पुनरुत्थित यीशु ही परमेश्वर है। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे इच्छा पर प्रभुता संपन्न प्रभु है। हमारी सेवा का निर्देशक भी वही है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पत्रस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पत्रस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ ना पकड़ा। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह छोटा सा सागर गलील सागर हमारे प्रभु की मृत्यु के पूर्व और पुनरुत्थान के पश्चात सेवाओं से कितना अधिक संबंधित है। यह शिष्यों के लिए एक परिचित स्थान था। यीशु ने उनसे कहा था कि वे गलील को जाएं, जहां वह उनसे भेंट करेगा। वे वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। शिष्यों का यह दल बड़ा विचित्र समूह था। मैं इसे समस्या वाले बच्चों का समागम कहूंगा। शमौन पत्रस जोशीला था, परंतु सदैव चूक करता था, अर्थात गलतियां कर बैठता था। वह मन का प्रेमी था, परंतु अनुसरण में दूर दूर रहता था। वह जल्दबाज और बेधड़क और अनुरागी व्यक्ति था। थोमा दूसरी ओर संयमवादी बुद्धिजीवी था। नतनेल जो चुटकुलेबाज था, और आरंभ में तो वह भी संशयवादी था, अर्थात संदेह करने वाला था। याकूब और यूहन्ना पवन पुत्र और अन्य 2 शिष्य थे। मेरे मित्रों, अनेक टीकाकार उनके पुनः मछली पकड़ने को उचित व्यवहार नहीं मानते हैं, परंतु यीशु ने तो ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। वह एक अति रमणीय स्थान है। ईस्टर के समय वहाँ दक्षिणी हवा, समुद्री लहरें, हरियाली और फूल उसे अत्यधिक मनमोहक स्थान बना देते हैं। 2010 वर्ष पूर्व तो वह और भी अधिक सुंदर स्थान रहा होगा। मेरे मित्रों, वे वहां प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और पत्रस जैसा उसका स्वभाव था मछली पकड़ने को उतावला हो उठा। उसके साथ अन्य 6 चेले भी उसके साथ हो लिए। डॉक्टर स्कॉट इसे विशेषज्ञों की विफलता कहते हैं। वे संपूर्ण रात मछली पकड़ने का प्रयास करते रहे परंतु विफल रहे, क्योंकि उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। यह उनके जीवन में परमेश्वर की योजना थी। गलील सागर की प्रभात अर्थात सुबह अति आनंददायक एवं मूल्यवान होती है। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य मछली पकड़ने के लिए चले गए हैं और उस स्थान का आनंद ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां पर अपना इंतजार करने को कहा था। कई बार हम इसे गलत समझते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह परमेश्वर की योजना है। मित्रों, हो सकता है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए भी है, ताकि आप उसके निकटता में आए, आप उसे पहचान ले। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ तकलीफों को आने देता है, बीमारों को आने देता है, यहाँ तक कि एक्सीडेंट भी होने देता है, ताकि हम प्रभु के निकटता में आ जाएं, उसे पुकारें और उसे अपने जीवन में जगह दें। जो संसार हमें शांति नहीं देता है, वह शांति सिर्फ परमेश्वर हमें दे सकता है, और इसी माध्यम से वह हमें अपना संतान भी बना लेता है। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम परमेश्वर के निकटता में आ जाएं, उसके उस भेद की बातों को समझने का प्रयत्न करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी इन शिष्यों की तरह आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझसे भी आप मिलिए, मुझे भी दर्शन दीजिए, मुझसे भी बातचीत कीजिए, और निश्चय जाने कि वह आपको अवश्य ही आशीष देगा। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु में बने रहिए, उस पर विश्वास कीजिए और उद्धार का आनंद प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो।